మునయో బ్రహ్మన్
బ్రహ్మరాతాదయో మలః శిష్యైరుపేత ఆజగ్ముః కశ్యపాంగిరసాదయః తాన్ సమేతాన్ మహాభాగాన్ ఉపలభ్య వశుత్తమః పూజయామాస ధర్మజ్ఞ దేశకాల విభాగవే కృష్ణం చాతత్ప్రభావజ్ఞ ఆశీనం జగదీశ్వరం హృదిష్టం పూజయామాస మాయయోపాత విగ్రహం పాండుపుత్రానుపాసీనాన్ ప్రశ్రయ ప్రేమ సంగతాన్ అభ్యాచష్టానురాగాశ్రయీ అంధీభూతేన చక్షుషా అహో కష్టం అహో న్యాయం యద్యూయం ధర్మనందనః జీవితుం నార్హత క్లిష్టం విప్రధర్మాచ్యుతాశ్రయః సంస్థితే తిరథే పాండవ పృథా బాల ప్రజావధుః యుష్మత్కృతే బహూన్ క్లేశాన్ ప్రాప్తాతో కవతి ముహుః సర్వం కాలకృతం మన్యే భవతాం చ జదప్రియాం సపాలో జద్వశే లోకో వాయోరివ ఘనావలిః యత్ర ధర్మసుతో రాజా గదా పాణిర్బ్రికోదరః కృష్ణో స్త్రీ గాండివం చాపం సుహృత్ కృష్ణస్తతో విపద్. వహా కురుక్షేత్ర మే బ్రహ్మర్షయః బ్రాహ్మణో మే శ్రేష్ఠ జన్ సర్వే సమస్త దేవర్షయశ్చ ఔర్ దేవతాఓ మే శ్రేష్ఠ దృష్టాఓ మే దేవతాఓ మే ఋషి జన్ సత్తమ హే సంత శిరోమణి శౌనక్ జీ రాజర్షయశ్చ ఔర్ రాజర్షియో కా సమూహ తత్ర జహాన్ భీష్మ థే వహాన్ आसन आए द्रष्टुम देखने के लिए भरत पुंगवां भरत वंश में श्रेष्ठ भीष्म पितामह को सुद गोस्वामी अब महाराज युधिष्ठिर के कुरुक्षेत्र गमन की बात कह रहे हैं. महाराज युधिष्ठिर बहुत शोक में थे अपने स्वजनों के मारे जाने से और अन्य सैनिकों के मारे जाने से भी. ज्ञान प्राप्ति के लिए शांति के लिए भीष्म पितामह से सुनने जा रहे हैं. तो जब ब्रह्मांड के समस्त ऋषि मुनियों ने राजर्षियों ने सुना कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से प्रवचन सुनने जा रहे हैं वे सभी वहां आए. तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम. भीष्म पितामह को यहां भरत पुंगवम कहा गया है. पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ. वास्तव में भरत वंश, महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत का वंश बहुत यशस्वी है। इसी वंश में महाराज युधिष्ठिर हुए, भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष इस वंश में हुए। इस वंश को अलंकृत किया अपने जन्म से। ये महाभागवत थे और इसके साथ ही साथ महावीर थे। पिता के प्रति इनकी ऐसी भक्ति थी कि इनके पिता ने इनसे प्रसन्न होकर इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसके द्वारा भीष्म पितामह के वैराग्य का पता चलता है। वह व्यक्ति निसंदेह बहुत महान है जिसके हृदय में संसार के भोगों की कामना न हो। भीष्म पितामह अभी जब किशोर अवस्था के थे, उसी समय उन्होंने जीवन में प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य नहीं लूंगा, विवाह नहीं करूंगा, मैं स्त्री सुख नहीं लूंगा और राज्य नहीं भोगूंगा। तो किस लिए? अपने पिता के सुख के लिए। उनके पिताजी एक दूसरी कन्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उस कन्या के पिताजी ने कहा कि मेरी कन्या का पुत्र जो हो वो राजा होगा, तब मैं आपको अपनी कन्या अर्पित कर सकता। तो शांतनु महाराज के सामने समस्या थी, क्योंकि देवव्रत जिसे आगे चलकर भीष्म पितामह कहा गया वो उनके पुत्र थे और ज्येष्ठ थे। तो महाराज शांतनु चाहते थे कि मैं विवाह भी कर लूं, लेकिन राजा बने देवव्रत। तो दोनों बातें हो नहीं रही थी, तो वे खिन्न थे। जिस किसी तरह से देवव्रत को पता चला कि हमारे पिताजी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसमें बाधक हो रहा, तो वे अपने आप पिताजी के पास गए और कहे कि पिताजी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य नहीं लूंगा, आप जिससे विवाह करना चाहते हैं कीजिए, और उस मां से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, मैं राज नहीं लूंगा। इस तरह से त्याग करना पूरे राज्य का, ये सामान्य बात नहीं है। आज के युग में 5 वर्ष के लिए, और वह भी एक खंड राज्य। राज्य क्या है? हेडेक है, विधायक बनना, सांसद बनना, लेकिन उसके लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, लड़ते हैं, ये भोगों में कोई वैराग्य नहीं। भीष्म पितामह कैसे व्यक्ति थे जो पूरे विश्व का साम्राज्य अपने पिता के सुख के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप विवाह कीजिए, मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं राज्य नहीं लूंगा। विवाह नहीं करूंगा, इसके पीछे उनकी प्रतिज्ञा का आशय यह था कि हो सकता है कि मैं विवाह करूं और आगे चलकर मेरा पुत्र यह क्लेम करे कि हमारे पिताजी का राज्य है वास्तव में। इसलिए वे अखंड ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिए। तो उनके इस व्रत से प्रसन्न होकर पिता ने आशीर्वाद दिया, शांतनु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र चिरंजीवी रहो, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक साक्षात काल भी तुमको मार नहीं सकता है, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान कहते हैं। जब तक वे नहीं चाहते तब तक कोई नहीं मार सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने इच्छा कर लिया कि मैं मरूं, तो उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार जिसके व्यवहार से पिता इतने प्रसन्न थे, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर दे दिया। शांतनु महाराज बहुत महान पुरुष थे। संतनु या शांतनु उनको कहते हैं। सम का अर्थ होता है सुख शांति, और तनु का अर्थ है विस्तार करने वालों। शांतनु महाराज अपने हाथ से जिसको छू देते थे उसका सारा दुख दूर हो जाता था, किसी भी तरह का, इसलिए उनका नाम शांतनु पड़ा। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में यह बात लिखी गई, शांतनु। और ऐसे महान राजा के पुत्र थे भीष्म पितामह। इतना बड़ा राजकुमार होने के बाद भी संसार के ऐश्वर्य और भोगों को भोगने की उनकी कोई लालसा नहीं, जबकि उत्तराधिकार में वो उनका हक था। स्वयं त्याग किए थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, महान ज्ञानी थे, महान धनुर्धर थे, जिन्होंने भगवान परशुराम जी के साथ युद्ध किया था और कौरव पक्ष से 10 दिनों तक सेनापति के पद पर रहे। महाराज युधिष्ठिर को इन्होंने अपने मरने का स्वयं ही उपाय बता दिया कि ऐसे मैं मर सकता हूं। जब महाराज युधिष्ठिर प्रणाम करने गए युद्ध के प्रारंभ में, तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी विजय हो। लड़ रहे कौरव के पक्ष से और आशीर्वाद दे रहे युधिष्ठिर को, और सबके सामने दुर्योधन आदि सुन रहे थे। तो महाराज ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि पितामह आपके रहते मेरी कैसे विजय हो सकती है? तो उन्होंने अपने मरने का उपाय बताया, कहा कि बेटा मैंने जीवन में शपथ लिया है कि मेरे सामने यदि कोई स्त्री खड़ी हो जाए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उस समय कोई वीर मुझे मार सकता है, ये उपाय बताया। तो वही अम्बा जिसका वे अपहरण करके लाए थे काशी से, बाद में वो तप करके शिखंडी के रूप में जन्म ली। तो शिखंडी आया, 10वें दिन खड़ा हो गया भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह जानते थे कि यह अम्बा है, इसलिए वे आयुध चलाते नहीं थे। उसी समय अर्जुन उन्हें मारकर धराशायी किए, भगवान की इच्छा से उनको वे गिराए गए। तो बाण सज्जा पर पड़े थे कुरुक्षेत्र में, कोई पास में नहीं था, केवल अंधकार अंधकार, और कुछ लाशें पड़ी थी आसपास। महाभारत में वर्णन है कि भीष्म पितामह कभी कभी सुनते थे सियार, लाश खाते थे, हुआ हुआ करते थे पास में। और महाराज युधिष्ठिर इसलिए हस्तिनापुर आ गए तुरंत युद्ध के बाद कि उन्हें अपनी माता गंधारी को संतवना देनी थी। गंधारी 100 पुत्रों को खो चुकी इस युद्ध में, इसलिए बहुत दुखनी थी। और महाराज धृतराष्ट्र, तो इन लोगों को सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज आदि सब आ गए थे हस्तिनापुर। और जब लोग हस्तिनापुर आए थे तो भीष्म पितामह उसी भयंकर युद्ध स्थल में पड़े हुए थे, लेकिन पड़े पड़े वे भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते थे और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से इनका स्मरण करते थे। एक दिन ध्यान कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारा विश्व, यहाँ तक ब्रह्मा शिवादि देवगण आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। इस तरह उन्होंने कहा। तो इतने बड़े भक्त थे, ज्ञानी थे, और यहां पर उनके ज्ञान का प्रमाण मिलता है कि जब ब्रह्मांड में यह समाचार फैला कि भीष्म पितामह प्रवचन करने वाले हैं, तो उनके प्रवचन को सुनने के लिए देवर्षि, राजर्षि और ब्रह्मर्षि सभी आए अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ। तो उनमें से कुछ के नाम यहाँ गिनाए जा रहे हैं, पर्वतो नारदो धौम्य, पर्वत मुनि नारद जी धौम्य उनके पुरोहित, उनके गुरु महाराज युधिष्ठिर के, और भगवान बादरायण समस्त वैदिक साहित्य को प्रकाशित करने वाले विश्व गुरु व्यास देव भीष्म से सुनने के लिए आए। ऐसे व्यास देव भीष्म पितामह के भाई लगते थे एक नाते से, वे सत्यवती के पुत्र थे, विवाह से पहले इनका जन्म हुआ था पराशर जी से, और कौरव कुल में ये पांडवों के साथ इनका बहुत गहरा संबंध था, देह का संबंध था। यद्यपि भगवान वेदव्यास देव ब्राह्मण हैं और महाराज युधिष्ठिर या भीष्म पितामह क्षत्रिय, लेकिन फिर भी एक दैहिक संबंध था। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं ईश्वर की इच्छा से जिसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते। तो भगवान वेदव्यास देव जो सबके गुरु हैं, तो सारा वैदिक साहित्य, उपनिषद, पुराण, महाभारत, वेदांत सूत्र सबके रचयिता हैं, वे भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए आए। और प्रवचन में मुख्य बात थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भीष्म देव की भक्ति। तो उस प्रेम और भक्ति में भीष्म पितामह किस तरह बोलेंगे, उन उद्गारों को सुनना आवश्यक था। तो भगवान वेदव्यास देव आए और बृहदस्व, भरद्वाज मुनि, ये सभी लोग अपने अपने शिष्यों के साथ आए, और रेणुका सुत, भगवान परशुराम जी भी आए। परशुराम जी भी गुरु थे भीष्म पितामह के, धनुर्विद्या में गुरु थे, उन्होंने सिखाया था भीष्म पितामह को युद्ध कला। लेकिन भगवान भी, श्री परशुराम जी भी भक्ति सीखने के लिए आए इनके पास, भीष्म पितामह के पास। वे तप करते थे, धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे, राम शस्त्र भृतामह। इसका अर्थ यह भी हो सकता है परशुराम जी, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। इतने बड़े हैं वे, लेकिन फिर भी जो भक्ति किया भीष्म पितामह ने, वह बहुत विरल है वास्तव में। जब कहते हैं कि पार्थ सारथी में मेरी प्रीति हो, जिनके केस घोड़ों की टाप से उड़ी हुई रज से धूमिल हैं, और जिनके मुख पर पसीने की बूंदे हैं, हाथ में चाबुक है दाहिने हाथ में, बाएं में घोड़ों की रास, और मुंह पर हूं हूं आ आ, ये जो शब्द है, इस तरह के कृष्ण में मेरी प्रीति हो, मैं जन्म जन्म में उन्हीं का दास बनू, तो इस तरह का भाव बहुत दुर्लभ था। इन्हीं भावों को सुनने के लिए भगवान परशुराम आए। और इसके साथ ही साथ वशिष्ठ मुनि एक परम प्रसिद्ध मुनि हैं, बहुत दीर्घजीवी हैं। जितने लोगों का नाम यहाँ गिनाया जा रहा है, सभी आज भी हैं, आज भी अपने अपने आश्रम में हैं, अपने अपने लोक में हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल इसी पृथ्वी पर और बॉम्बे के आसपास सब रहे, पूरे ब्रह्मांड से आए थे। कश्यप जी आए जो स्वर्ग में रहते हैं, देव गुरु बृहस्पति जी आए। मैं सवेरे कहा था कि ये ऋषि मुनि अपने जीवन में जो प्राप्तव्य विषय है भगवान कृष्ण की भक्ति और ज्ञान, उसको पाने में फिर मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते थे। कभी नहीं सोचे देव गुरु बृहस्पति जी कि मैं एक मनुष्य से सुनूंगा और वो भी एक क्षत्रिय से। हिचके नहीं, उनके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं। चाणक्य पंडित ने कहा है कि सोना अगर कीचड़ में पड़ा है फिर भी हम उसे ले लेते हैं, है ना, घृणा नहीं करते। और उन्होंने कहा है कि इसी तरह से कोई कन्या बहुत गुणवती हो तो वह छोटे कुल में जन्म ली हो फिर भी उसके साथ विवाह करना चाहिए, इस तरह से वो कहते हैं। और स्वर्ण यदि गंदे जगह में भी पड़ा है या बहुत पापी के पास भी है, दुराचारी के पास भी उसके घर में है, तो उसे भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जब इन प्राकृत वस्तुओं की इतनी कीमत होती है, इसके लिए कोई और विचार नहीं किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए और क्या मैटेरियल कंसिडरेशन करना है। या हा वह है, मैं कैसे वहां बैठूंगा, कैसे सुनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब विचार ऋषियों ने नहीं किया। और ऐसा विचार होता तो उस युद्ध क्षेत्र में जहां अभी अभी ब्लड गिरे होंगे, खून गिरे होंगे, और सब लोग उस स्थान पर जाकर के बैठ करके क्षत्रिय से सुनना, और वो अभी क्षत्रिय कोई बैठ करके प्रवचन नहीं करने वाले थे, वो बाण सज्जा पर थे, गिरे हुए थे, और उनसे सुनने के लिए गए।
जो कुछ भी हो, जैसे नीति शास्त्र कहता है कि राजा नहीं, वैद्य और गुरु और मंत्री, ये जितना बूढ़े होते हैं उतना ही अच्छा होते हैं, और सन्यासी, जितना बूढ़े होते जाते हैं उतना अच्छे होते जाते हैं, और गायक, वेश्या, पहलवान, ये लोग जितना बूढ़े होते जाते हैं उतना ही गायब होते जाते हैं, शरीर खराब होता जाता है, ऐसा लिखा गया। तो जो प्रवचन करने वाले हैं और यदि वे गुरु हों, आचार्य हों, तो यदि वे अधिक आयु के हों तो अच्छा है। ये आज के दो दिन के लड़के को बना दीजिए गुरु और कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके रख दे, है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी का समाचार आना ही है। कोई उसको कह दे गुरु है, गुरु है, गुरु है, तो गुरु कहने से तो होगा नहीं, बहुत दिन तक सीखना पड़ता है, बहुत दिन साधना करनी पड़ती है, साधना करके परिपक्व आदमी होता है, जब सांसारिक वासनाएं उसकी बिल्कुल निरस्त हो जाती है, तो भगवान के प्रेम में मस्त रहता है, वह व्यक्ति वास्तव में गुरुत्व कर सकता है। तो भीष्म पितामह 400 वर्ष के थे जिस समय उनकी मृत्यु हुई, और आपने सुना कि जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा भीष्म को तो ऐसा लगा जैसे देवता आकाश से, स्वर्ग से गिरे हो। उस उम्र में भी वे इतना सुंदर थे, उनका शरीर इतना तेजस्वी था, चूंकि वे अखंड ब्रह्मचारी थे, बहुत सुंदर उनका देह था। यही कारण है कि शुद्ध गोस्वामी उनकी उपमा दे रहे थे, दिवस च्योतम इव अमरम, जैसे अमर स्वर्ग से गिरा हो ऐसा लग रहे थे। एक तो वे वृद्ध थे, गुरु वृद्ध पितामह, और बाण सज्जा पर पड़े थे, कई दिन से खाए नहीं थे, युद्ध करके थके थे, गिरे थे, उस समय भी वे ग्लोरियस थे, चमक रहे थे, यह उनकी भावना थी। वास्तविक बात ये थी कि भीष्म पितामह के हृदय में पार्थ सारथी हमेशा जगमगा रहे थे। युद्ध में जो उन्होंने कृष्ण को देखा था रथ हाँकते हुए, वह छवि उन्हें एक सेकंड भी नहीं भूल पाती थी, उन्हें भान ही नहीं था कि मैं बाण सज्जा पर हूँ, कुरुक्षेत्र में हूँ या कहाँ, निरंतर उसी का चिंतन कर रहे थे। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे हमारे आंखों के सामने आ जाए तो उनको देखते हुए मैं शरीर त्यागूंगा। तो भक्त के हृदय की भावना भगवान जानते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अज्ञान भर करके उनके बहाने में गए। ये सब ऋषि मुनि आ रहे हैं सभी अपने अपने शिष्यों के साथ, और असित मुनि का नाम भगवत गीता में आया है, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं, देवलो असितो व्यास, भगवान स्वयं कहते हैं, नहीं अर्जुन कहते हैं कि असित मुनि आपके आपके विषय में कहा करते हैं कि आप परब्रह्म हैं, आप भगवान हैं। असित मुनि हस्तिनापुर आया करते थे और वे प्रवचन करते थे कृष्ण के विषय में, तो अर्जुन ने कहा है गीता में कि असित कहते हैं, देवल कहते हैं, भगवान वेदव्यास देव कहते हैं, क्या परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, अजम विभु, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, आपके विषय में सभी ऋषियों ने आज तक यही कहा, जिसे मैं मिला, जिसका सुना, सभी यही कहते हैं कृष्ण पर ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है और सनातन पुरुष है, सभी यही कहते हैं। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, उसमें से नाम रख रहे हैं देवर्षि नारदस्तता, असितो, देवलो, व्यास और स्वयं चैव ब्रवीष्मि, और आप स्वयं भी बता रहे हैं। भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्वा सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित, मैं सबको जन्म दिया हूँ और सबका पालन करता हूँ, यह मान करके विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं। और अपने बारे में भगवान ने बहुत बहुत बताया तो अर्जुन उसको स्वीकार करते हैं, जैसा आप कहते हैं अपने विषय में स्वयं च एव ब्रवीसी, जैसे आप अपने विषय में स्वयं बोलते हैं ऐसा ही मैं समस्त ऋषियों के मुख से आपके विषय में सुना। और अर्जुन इतने बड़े पुरुष थे, महान थे कि समस्त समाज को वे अटेंड किए थे, इसी देह से स्वर्ग में गए थे और स्वर्ग में देवताओं की सभा में कृष्ण के विषय में क्या क्या बात होती थी उसे भी वे सुने थे। भगवान वेदव्यास देव के तो पौत्र ही थे, तो इस तरह से बहुत निकट का संबंध था ऋषियों से। प्रचुर संग किया था अर्जुन ने और पांडवों ने ऋषि मुनियों का, 13 वर्ष तक वन में रहे थे तो प्रायः ऋषि मुनि के पास बैठकर इस तरह सत्संग किया करते थे। और ऋषि मुनि सब भगवान के विषय में बताया करते थे, कृष्ण के विषय में कि वे ये हैं वो हैं। तो अर्जुन कहते हैं आहुस्ताम ऋषयः सर्वे सर्वे ऋषयः, आपके विषय में सभी ऋषि ऐसा कहते हैं, कोई भी ऋषि ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि कृष्ण भगवान नहीं, वो सभी ऐसा कहते। सर्वम एतद ऋतम मन्ने जन्मा वदसि केशव, हे केशव आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं सर्वम ऋतम मन्ने, मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं सत्य मानता। तो इस तरह के विचार कृष्ण के विषय में वास्तव में भीष्म पितामह के मुख से निकलेगा, इसी को सुनने के लिए ऋषि लोग जुट रहे। तो असित मुनि का नाम भगवद गीता में है, कृष्ण तत्व को जानने वालों में कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, सुखदेव गोस्वामी आदि, कश्यप मुनि और बृहस्पति जी। कश्यप आंगी रसाद इसलिए कहा गया है, कश्यप जी और बृहस्पति ये सब एक साथ आए हैं, कुछ ग्रुप है, स्वर्ग से आने वालों का एक ग्रुप है और इधर उधर से आने वालों का अपना अपना ग्रुप है। तो अपने अपने शिष्यों के साथ, अनुगामियों के साथ आ रहे हैं। अपने शिष्यों के साथ क्यों आ रहे हैं? गुरुजन यह सोचते हैं कि हमारे शिष्यों को भी यह परम लाभ मिलना चाहिए, ये परम लाभ उनको मिलना चाहिए, यह गुरु का धर्म है। वास्तव में जैसे पिता अपने पुत्र को भेजता है पढ़ने के लिए कॉलेज में विश्वविद्यालय में भेजता है, जाओ पढ़ करके आओ, तो उसी तरह से गुरु का धर्म है उसको भेजना चाहिए शिष्य को कि जाओ यहाँ सुन करके आओ, यहाँ पढ़ करके आओ, ये करके आओ। ऐसा नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए तुम कहीं मत सुनो, तुम मूर्ख बन करके मेरे आश्रम में रहो क्योंकि तुम मेरे शिष्य, मैंने स्टैंप डाल दिया है इसलिए यहीं पर बोका बन कर रहो। सब जगह यही भावना प्रचलित हो गई है और यह शिष्यों के प्रति स्नेह का अभाव सूचित करता है। कोई भी पिता कभी ये सोचेगा कि हमारा बेटा मूर्ख रहे लेकिन हमारे घर में रहे, वो स्वयं पैसा देता है, भेजता है जाओ 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 पढ़ो, और दूर पढ़ने के लिए भेजता है, यह स्नेह का सूचक। यदि रियली शिष्यों के प्रति स्नेह होगा तो गुरु उनके विकास के लिए भेजेगा अधिकारियों के पास, दूसरे के पास सुनने के लिए, केवल अपने पास ही नहीं रखेगा। तो शिष्यों के साथ ये सभी ऋषि मुनि आए, विश्व के सबसे बड़े बड़े लोग, और सुखदेव गोस्वामी वहां आए सुनने के लिए। और जब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे उस समय भी वशिष्ठ जी आएंगे, वेदव्यास देव, पर्वत, नारद आदि सब आएंगे। वेदव्यास देव के गुरु हैं नारद जी और वेदव्यास देव गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन वे लोग भी अपने शिष्य की कथा सुनने आए, ये भागवत में लिखा गया है प्रथम स्कंध में। तो इस प्रकार बहुत बड़ा समाज जुटा। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तम पूजया मास धर्मज्ञो देश काल विभागवित। तो उन महाभाग्यवान, महाज्ञानी, महान भगवत भक्त मुनियों को अपने पास आया हुआ देखकर
वसुत्तम वसुओं में उत्तम भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया। ये बाण सज्जा पर थे, उठ नहीं सकते थे, उठ करके किसी को प्रणाम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूजया मास पूजा किया उनकी। धर्मज्ञ धर्म जानते हैं, धर्मज्ञ का अर्थ है जो धर्म को जानता है। भिन्न देश में और भिन्न काल में क्या कर्तव्य होता है मनुष्य का भीष्म पितामह जानते थे। तो वह देश भिन्न था, भीष्म पितामह का अपना घर नहीं था वहां कुरुक्षेत्र में। यदि अपने घर में होते तो इन ऋषियों के चरण धोते, उनका स्वागत करते, उन्हें आसन देते, खिलाते पिलाते, लेकिन वे विषम देश में थे, युद्धस्थल में थे और काल भी दूसरा था, लेकिन फिर भी देश काल विभाग वित्त देश और काल के अनुसार उन्होंने सबकी पूजा किया, सबका सम्मान किया। ऐसे हाथ भी वे नहीं जोड़ सकते थे, हाथ भी ऐसे बाणों से ही बिंधे थे, लेकिन वे हंसते थे और कुछ मस्तक झुकाने जैसा करते थे। मस्तक झुकने का प्रश्न नहीं था, वो तो ऐसे सोए थे और उनको निकट से आकर के सब ऋषि मुनि प्रणाम कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे उनका। लेकिन भीष्म पितामह अपने धर्म को अपने कर्तव्य को नहीं भूल पाए, वे सबको प्रणाम किए, क्योंकि वास्तव में सभी उनके पूज्य थे। नारद मुनि, भगवान वेदव्यास देव तो कहना ही नहीं, समस्त ऋषि मुनि, भगवान परशुराम सभी आते थे भेंट करने के लिए, देखते थे, तो सबका उन्होंने सम्मान किया। देश काल के अनुसार किया जाता है। मान लीजिए आप ऐसे जगह पर हैं, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आपके पास पानी भी नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन कोई अतिथि आ गया, कोई साधु महात्मा आया, केवल सुंदर वचन बोला जाए उसको अभी एक बहुत बड़ी पूजा हो गई। आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, कैसे हैं। इस तरह से मीठा वचन आदमी बोले तो यह भी पूजा है। ऋषि मुनि इसकी अपेक्षा नहीं करते थे कि भीष्म पितामह उठ करके हमें दंडवत करें या हमें पानी दें और हमें भोजन कराने, क्योंकि देख ही रहे थे सब लोग ये भिन्न देश में है, भिन्न काल में है। तो इसको देश काल विभाग कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म, उसका कर्तव्य देश और काल से थोड़ा थोड़ा भिन्न हो जाता है। अपने घर में कोई है, किसी महान पुरुष से भेंट हो गई तो उसको खिलाएगा पिलाएगा, स्वागत करेगा, लेकिन वही साधु उसको ट्रेन के डिब्बा में मिल जाए तो उस समय तो वो दूसरे तरह से स्वागत करेगा, कुछ वार्ता होगी, कुछ प्रश्न होंगे, ये होगा, लेकिन घर उठा करके तो डिब्बे में रखा नहीं है। तो वो भिन्न देश है, परंतु देश काल के अनुसार व्यवहार करने में भीष्म पितामह पटु थे। उन सब ऋषि मुनियों का स्वागत उन्होंने किया था राजसूय सभा में, जब उनके घर पर लोग आए थे उस समय पूजा किए थे सब, लेकिन आज उठ ही नहीं सकते थे, केवल वाणी उनके पास थी और नेत्र देखते थे और वाणी से कहते थे नमस्कार है आइए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन वो तो हाथ जोड़ नहीं सकते थे, तो कहते थे बहुत आनंद के साथ, मेरा भाग्य है कि आप आए, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, यही स्वागत था उनका। और इसी से ऋषि मुनि तृप्त हो जाते थे, ये तो अपना भाग्य मान करके आए थे इनका दर्शन करने के लिए, लेकिन भीष्म पितामह अपना अहोभाग्य मानते थे उनका दर्शन करके। इस तरह से परस्पर संबंध होता है। तान समेतान, समेतन का अर्थ आए हुए, कुरुक्षेत्र में आए हुए उन महान तेजस्वी ऋषि मुनियों का भी स्वागत किए। यह देश काल विभाग भी बहुत सुंदर, प्रेम से अनुकूल भाव से किसी पर देखना भी उसका बहुत बड़ा सम्मान है। अनुकूल भाव से देखा जाए तो बहुत बड़ा सम्मान। मछली अपने अंडे को देख करके पोष देती है, केवल स्नेह से देखती है और अंडा बढ़ता है, और पक्षी अपने पंख की छाया से अंडे को बढ़ा देते हैं। अंडे के भीतर कुछ भी डालते नहीं हैं, बाहर से ही केवल पंख की छाया से सहला करके और बढ़ा देते हैं। और कछुआ केवल चिंतन से, ध्यान से अपने अंडे को पोष देता है। इतना बड़ा प्रभाव होता है चिंतन का, मानसिक शक्ति का, वाणी का और नेत्र का। कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा धन हो हमारे पास तब हम बहुत स्वागत करेंगे। जो एसेट भगवान ने दिया है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति से महापुरुषों का स्वागत करना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने किया, देख रहे थे बहुत श्रद्धा से और बोल रहे थे, इस तरह उन्होंने स्वागत किया। जब समस्त ऋषि मुनियों का इस तरह सम्मान किया उन्होंने, और भगवान कृष्ण के लिए स्पेशल पूजा किया, इसके लिए एक श्लोक में कहते हैं, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिष्ठम पूजयामास मायोपात विग्रहम। कृष्णम च, और कृष्ण को उन्होंने पूजया मास, वहां से संबंध है, या आगे भी पूजया मास है। पहले श्लोक में पूजया मास पूजा किए, और दूसरे श्लोक में भी पूजया मास पूजा किए, कृष्ण की स्पेशल पूजा किए। कैसे? हृदिष्ठम, हृदय में ध्यान करके षोडशोपचार से पूजा किए, मानसिक पूजा किए। 16 प्रकार की पूजा की जाती है, मन में ध्यान करके पूजा करने लगे, और बाहर नेत्रों से देख कर पूजा कर रहे थे। जो भीष्म पितामह ऐसे लेटे हुए थे तो वे बहुत दूर तक सब जगह देख नहीं सकते थे, यहां तक कि शीर में बाण लगे थे तो ऐसे भी नहीं कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उनके चरण के पास ही निकट बैठे थे, जहां उनकी दृष्टि जा रही थी। आसीनम, भगवान निकट बैठ गए थे। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के चरणों के पास बैठे थे। आसीनम कौन है? कृष्ण जगत ईश्वरम, संपूर्ण जीवों के, ब्रह्मादि देवताओं के भी ईश्वर हैं भगवान कृष्ण। तो भीष्म पितामह ने देखा, माया उपात विग्रहम, माया कृपा को कहते हैं संस्कृत में, दंभ या कृपा, यह कृपा अर्थ है, जो कृपा करके अपने श्री विग्रह को इतना निकट लाए थे। भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि प्रभु कृपा करके आए हैं, मैं तो चल नहीं सकता था, मैं तो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गिरा हूं। माया उपात विग्रह, भगवान वास्तव में कृपा करके उनके पास आए थे, भीष्म पितामह अनुभव कर रहे हैं, और सोच रहे ओहो मेरा आज ऐसा दुर्दीन है कि मैं इस कुरुक्षेत्र के जघन्य स्थल में, युद्ध क्षेत्र में पड़ा हूं। मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं जाकर हस्तिनापुर अपने प्रभु का दर्शन करूं, उनसे बात करूं, लेकिन कोई न कोई बहाना करके देखो वे स्वयं आ गए मेरे पास। इसको कहते हैं माया उप आत विग्रह, उप माने निकट, आत माने लाया हुआ, विग्रह माने सुंदर स्वरूप। इतना सुंदर हमारे प्रियतम भगवान स्वयं आए मेरे पास, जिसकी बहुत लालसा थी भीष्म पितामह को। कितना भी दुखी होंगे, कुरुक्षेत्र में पड़े हैं और कृष्ण हस्तिनापुर में, चाहने के बाद उठ कर जा नहीं सकते थे, तो भगवान स्वयं आए। उन्होंने देखा कि हमारे भतीजे पांडु के पांचों पुत्र हमारे पास बैठे हैं। भीष्म पितामह ने देखा कि वे प्रश्रय और प्रेम से युक्त हैं। पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान,
भीष्म पितामह ने देखा पांडु पुत्र बैठे हैं मेरे बिल्कुल निकट, मतलब युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और पांचों भाई अपने पितामह की इस दशा से बहुत दुखी थे। और उसमें कारण वे लोग हैं, अर्जुन ने तो स्वयं धराशायी किया था भीष्म पितामह को, तो उस दशा में उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि ओह हमें जो गोद में खिलाए, हमारा पालन किए हमारे पितामह, हमने उनको इस दशा में पहुंचा दिया, तो इसका उन्हें बहुत कष्ट था। और हृदय से प्रेम था भीष्म पितामह के प्रति उनका, और नम्रता थी, प्रश्रय, प्रश्रय का अर्थ है नम्रता, विनय, विनय से झुके हुए थे, बैठे हुए थे, बहुत संकोच में थे। जिसको युद्ध क्षेत्र में धराशायी किए हैं, गिराए हैं, बाण मारे हैं, शरीर के अंग अंग में बाण मारा गया था, उसी से कुछ सीखने के लिए आए। तो इस बात से महाराज युधिष्ठिर को बड़ा कष्ट हो रहा था मन ही में, तो लोग और दुखी थे। भीष्म पितामह अपने पौत्रों को, युधिष्ठिर आदि को अभ्याचष्ट देखे, अभी आचष्ट, आचष्ट का अर्थ होता है देखना और बोलना दोनों, अभ्याचष्ट का अर्थ है वो देखे, कैसे नेत्रों से देखे, अनुराग आश्रय अंधीभूते न चक्षुषा, अनुराग के आंसुओं से भीष्म पितामह की आंखें भर आई थी, ये अच्छी तरह से पांडवों को नहीं देख रहे थे, लेकिन अपने पौत्रों को देखे तो भीष्म पितामह अपने दुख को भूल गए, उन्हें अपने दुख का स्मरण नहीं रहा। युधिष्ठिर आदि अपने पौत्रों के दुख का उन्हें स्मरण आने लगा कि ये जीवन भर केवल दुख भोगे, इनको सताया गया, क्योंकि भीष्म पितामह सब जानते थे किस तरह भीम को विष दिया गया, लक्षा भवन में उनको जलाने का प्रयास किया गया, द्रौपदी को अपमानित किया गया, फिर राज्य त्याग दिए, राज छीन लिया गया, वन में गए, क्या क्या कैसे कैसे, और विशेष करके भीष्म पितामह को अपने पुत्र वधु पृथा की याद आ रही थी। पृथा ने कितना कष्ट सहा है, इसका स्मरण करके उनके आंखों में आंसू छल बह रहे थे। तो अनुराग आश्रय, अस्त्र मने आंसू, अनुराग के आंसुओं से अंधीभूते न चक्षुषा, उनकी आंखें अंधी हो गई थी। अंधी का अर्थ मतलब पानी भर जाने से देख नहीं रहे थे, और इस दशा में पांडवों को देखने का प्रयास कर रहे थे और इस प्रकार बोले, स्नेह उमड़ आया। भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि आज इनको राज्य मिला इतने वर्षों के बाद, तो उस समय ये हमारे दशा पर शोक प्रकट कर रहे हैं, या द्रोणाचार्य को मार दिए इस पर शोक प्रकट कर रहे हैं, इनके स्वजन मारे गए। भीष्म पितामह अपने पौत्रों के हृदय को पढ़ लिए, जानते हैं कि ये बहुत संकोच में हैं, और खास करके मैं जो इस दशा में गिरा हुआ हूं, इसलिए इनको बहुत दुख है मन में, और उनके पूर्व दुख का स्मरण करके बहुत अनुराग उत्पन्न हुआ। देखिए सूत जी कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पांडवों के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और भीष्म पितामह के लिए अनुराग शब्द का। पांडवों का अपने दादा से रियली प्रेम है, बहुत घनिष्ठ प्रेम था, और भीष्म पितामह का उनमें अनुराग था। यदि अनुराग नहीं होता तो वे अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं युधिष्ठिर महाराज को नहीं बताते। कई ऐसा अवसर आया युद्ध में जबकि भीष्म पितामह वास्तव में बहुत ढिलाई से लड़ते थे, वे अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। एक दिन दुर्योधन आकर के रोने लगा इनके पास, कहने लगा कि दादाजी आप बुरा नहीं मानेंगे, सब तरह से मैं आपका पालन कर रहा हूं, मतलब साफ कहा कि मैं आपको खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, आपको भवन दिया हूं, सब कुछ दिया हूं, लेकिन आप लड़ तो रहे हैं हमारे तरफ से, लेकिन आपका हृदय लड़ नहीं रहा है। मैं देखता हूं कि अर्जुन के साथ आप जब युद्ध करते हैं तो ये नहीं भूल पाए हैं कि अर्जुन आपका पौत्र है। जब यही करना था तो आप लोग युद्ध करने के लिए क्यों नहीं मना कर दिए हमको? वो अंततः हमें हारना ही था, ये मैं जान गया होता तो आप लोगों पर भरोसा नहीं किया होता। इस पर भीष्म पितामह क्रोधित हो गए। तुम कुछ भी कहो, वो बड़ा दुख हुआ। उन्हीं का राज्य था वास्तव में भीष्म का, लेकिन उन्होंने लिया नहीं था, त्याग दिया था स्वेच्छा से, और फिर ये लोग उत्तराधिकारी बने थे। विचित्र वीर्य महाराज के बाद धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, ये सब उनके पुत्र हुए, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि हुए। इनका छोड़ा हुआ राज्य लोग भोग रहे थे, और वो कहता है कि मैं आपको खिला रहा हूं, मैं आपको पोष रहा हूं, आप ठीक से लड़ नहीं रहे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे जैसे लड़ना है मैं लड़ रहा हूं, देह तुम्हारा है, हृदय युधिष्ठिर का है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा, कपट नहीं करते थे। मेरा मन युधिष्ठिर के साथ है, देह तुम्हारी ओर से लड़ रहा है, लड़ेगा जो कुछ भी करना होगा, लेकिन तुम ये चाहते हो कि मैं हृदय भी तुमको दे दूं, तो ये नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो बहुत रोने लगा, बाद में अफसोस किया कि मैं गलती की, आपसे ऐसी बात कह दिया, लेकिन मैं तो आप पर भरोसा किया था, ये किया था, वो किया था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन तुम नहीं जानते हो क्यों अर्जुन जीत रहा है या पांडव क्यों जीत रहे हैं, भगवान उनके साथ हैं, कोई भी शक्ति अर्जुन को परास्त नहीं कर सकती, मुझमें कुछ भी नहीं है अर्जुन के आगे बल, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं कई बार पहले तुमको रोका था कि युद्ध मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन तुम कर्ण के भरोसे युद्ध किए। कर्ण को डांटा था भीष्म पितामह ने कि तुम्हारे चलते यह उदंड हो रहा है, तो कर्ण में और भीष्म पितामह में बहुत तनाव हो गया, झगड़ा हो गया। भीष्म पितामह ने यहां तक कह दिया, अरे चंडाल सुत, क्या बात करते। भीष्म पितामह में और कर्ण में जब झगड़ा हो गया, कर्ण यहां तक कह दिया कि ठीक है, जब तक आप लड़ेंगे मैं नहीं लड़ूंगा, दिखाइए अपना बल। समझाता रह गया दुर्योधन कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सहो सहो, लेकिन वो बहुत जिद्दी था कर्ण। 10 दिन तक वो केवल आराम किया, वो युद्ध नहीं किया, यह भगवान का ट्रिक था, नहीं तो अर्जुन कर्ण के साथ लड़ते कि भीष्म के साथ लड़ते, किसी एक के साथ लड़ना था। 10 दिन तक वो युद्ध नहीं किया। 11वें दिन आकर भीष्म पितामह से आज्ञा मांगा कि अब आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, जाओ लड़ो, लेकिन तुमने बर्बाद किया है दुर्योधन को। वे बारम्बार इस बात को कहते थे। तो जब दुर्योधन रोने लगा युद्ध में, शिविर में रात के समय, तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया। यह प्रतिज्ञा किया कि देखो, पांचों पांडवों में से, नहीं अर्जुन को उन्होंने कहा, कल युद्ध में अर्जुन मरेंगे और नहीं तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी होगी, दोनों में एक होगा। वो जानते थे कि भगवान अर्जुन को तो मरने नहीं देंगे। कृष्ण की यह प्रतिज्ञा थी कि अशस्त्रम सहाय मात्रम करिष्यामि, मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बिना शस्त्र ग्रहण किए केवल वाणी से सहायता करूंगा, परामर्श दूंगा, राय दूंगा, या रथ हाकूंगा, जो कुछ भी हो। और भीष्म ने प्रतिज्ञा की कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा। ये और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा सारे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी, और भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए कहा कि कृष्ण से मैं शस्त्र ग्रहण करा करके रहूंगा, यदि मैं वास्तव में गंगा जी का पुत्र हूं, शंतनु का पुत्र हूं, ऐसा युद्ध करूंगा कल कि मैं रथ तोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और नहीं तो कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करना पड़ेगा। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता को जगत में जाहिर करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया। तो इस प्रकार का उनका व्यवहार था। तो पांडवों से हमेशा स्नेह था, लोग करें क्या, युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के शुरू में कहा कि पितामह जी आपने आशीर्वाद दिया कि हमारी विजय हो, लेकिन आप दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा, अर्थ किसी का दास नहीं है, पुरुष अर्थ का दास होता है। ये रुपया पैसा किसी का दास नहीं होता है, मनुष्य रुपया पैसा का दास होता है। तो क्या करें, हम इनके आश्रय में रहे, खाए पिए रह रहे हैं, इसलिए देह पर इनका अधिकार है। मन तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम कामना करता हूं हृदय से तुम्हारी विजय। यह वाक्य भीष्म पितामह का बहुत प्रसिद्ध है कि अर्थ पुरुष का दास नहीं है, पुरुष अर्थ का दास है ना। आप देखते हैं, आप बैठे हैं, रुपया पैसा आपके पास उड़ करके नहीं आएगा। वो नहीं कहेगा कि हमको स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, बल्कि पैसा कमाने के लिए आपको जाना पड़ता है। चाहे फैक्ट्री खोलकर कमाइए, चाहे सर्विस करके कमाइए, चाहे खेती से कमाइए, अर्थ आपका दास नहीं है, आप अर्थ के दास। और अर्थ की आवश्यकता पड़ती है जीने के लिए, कपड़ा के लिए, भोजन के लिए, घर के लिए जरूरत पड़ती है। तो अन्न दे करके, वस्त्र दे करके, घर दे करके दुर्योधन ने इस शरीर को पाला है, धृतराष्ट्र ने पाला, इसलिए शरीर तो उसके काम में आएगा, लेकिन मन से मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यह भीष्म पितामह का अनुराग था पांडवों के प्रति। तो अंत में उन्होंने देखा पांचों भाइयों को सिर नीचा किए हुए, संकोच वश अपने पितामह पर देख नहीं रहे थे, लज्जा आ रही थी, कौन मुंह लेकर के हम इनसे पूछें क्या करें। और देखो आज, और ये शोक भी हो रहा था, हाय हाय हमारे पितामह अब इस संसार से चले जाएंगे, जिनका दर्शन करने के लिए संपूर्ण विश्व के महात्मा आए हैं, राजर्षि आए हैं, हमने धराशायी किया। शोक हो रहा था, कोई सुनेगा भी तो क्या कहेगा, किसने इनको गिराया, किसने इनको बाण मारा, तो अर्जुन ने मारा। ये सुनने में कितनी दुखद बात थी, इसलिए वे सिर नीचा किए विनय और प्रेम से युक्त थे। तो उनको देख करके भीष्म पितामह की आंखों में आंसू बहने लगे और आंसुओं से दृष्टि शक्ति कुछ दबी और इस तरह बोलने लगे, अहो कष्टम, अहो न्याय, बहुत कष्ट की बात है। अपने जीवन के अंत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर आदि की दशा को देख करके रो रहे हैं। अहो कष्टम का अर्थ है कि यह निंदनीय बात है, यह निंदनीय है, वास्तव में यह अन्याय है। कि जब जुयम धर्म नंदना, धर्म पुत्र तुम लोग जो कष्ट से जी रहे हो, यह वास्तव में निंदनीय बात है। जो तुमको कष्ट में डाला है वह निंदा का पात्र है। कष्ट में डाला कौन है, तो भगवान डाले हैं। तो फिर भीष्म पितामह कह रहे हैं यह निंदनीय बात है, यह अनुचित है, अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मनंदन तो युधिष्ठिर महाराज हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का अनुगामी होने से सभी भाइयों के लिए धर्मनंदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे धर्मनंदनो, जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम, क्लिष्टम जीवितुम न अर्हत, तुम लोग क्लेश पूर्वक जीने के योग्य नहीं, तुम लोगों को ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए था। क्योंकि विप्र धर्माच्युताश्रय, तुम लोग ब्राह्मणों के आश्रय में हो, धर्म के आश्रय में हो, और सबके बाद अच्युत के आश्रय में हो, कृष्ण के आश्रय में हो, जो ब्राह्मणों के अनुसार चले उनके आश्रय में हो, धर्म के आश्रय में हो और कृष्ण के आश्रय में हो, उसको इस तरह से कष्ट नहीं होना चाहिए। यद्यपि भीष्म पितामह जीवन भर ये मनोरथ किए थे कि युधिष्ठिर को राजा होना चाहिए, युधिष्ठिर को राजा होना चाहिए, उनके मन में यह मनोरथ रहता था और इस युद्ध में उनकी कामना थी, तो यह देख करके वे भीतर से बहुत प्रसन्न भी हुए थे, कि अंत में युधिष्ठिर राजा हुआ, ठीक जो चाहते थे हो गया। और युधिष्ठिर को राजा के रूप में देख करके वे देह त्याग करने जा रहे थे, उनको प्रसन्नता थी कि जो मैं चाहा था हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके, उनकी स्तुति करके और युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में देख करके भीष्म पितामह बड़े संतोष से शरीर त्याग करना चाहते थे, लेकिन फिर भी पूर्व के कष्टों की याद आ गई और वर्तमान में भी वे रो रहे थे भीष्म पितामह के लिए। इसलिए भीष्म पितामह उनको देख करके रोने लगे और कहने लगे, ये कष्ट है, ये निंदा की बात है, जुगुप्सित है तुम लोगों का दुखी होना। इस तरह से तुम लोग दुखी रहे तो कौन व्यक्ति फिर कृष्ण का आश्रय लेगा, कौन धर्म का आश्रय लेगा और कौन ब्राह्मणों का आश्रय लेगा। जब विप्र धर्माच्युताश्रया, विप्र धर्म और अच्युत का आश्रय लेने वाले लोग जब इस तरह से दुख भोगेंगे तो फिर कौन आश्रय लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कष्टम, ये निंदनीय बात, और अन्यायम, यह अन्याय। यहां दुख पापी को होना चाहिए, अधार्मिक जो है उसको दुख होना चाहिए, लेकिन तुम लोग सदा धर्म पर चले, धर्मनंदना मूर्तिमान धर्म हो, तुम लोगों ने सपने में कोई पाप नहीं किया है बेटा, फिर भी तुम लोगों को इतना कष्ट हुआ, यह दुख की बात है, यह अन्याय। समस्त ऋषि मुनि इस बात को सुन रहे हैं। पांचों भाइयों को जो अब तक कष्ट हुआ वह बिल्कुल गलत हुआ है, कर्म फल देने वाले पर लांछन है, थू थू है, ऐसा भी बोल रहे हैं। और इसके बाद कहते हैं अब उन्हें अपने पुत्र वधु, मतलब महाराज पांडु की पत्नी कुंती की याद आ रही है। और कहते हैं संस्थिते ति रथे पांडव प्रथा बाल प्रजा वधु, जब अति रथी महारथी पांडु का देहावसान हो गया उस समय बेचारी प्रीथा बहुत कष्ट पाई। उस समय उसके बच्चे मतलब तुम लोग बहुत कम उम्र के थे, बालक प्रजा, जिसकी प्रजा जिसके पुत्र बालक थे, वह मेरी पुत्र वधु बहुत दुख पाई तुम लोगों के कारण, तुम लोगों के पालन पोषण में बहुत कष्ट पाए। जुस्मत कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता, भीष्म पितामह सब देखे थे कि वह बेचारी विधवा राजर्षि की पत्नी होकर के भी अपने पुत्रों के पालन में कितना कष्ट पाई थी, कि पांच पांच बेटा ब्राह्मण के रूप में रहते थे लक्षा भवन से निकलने के बाद, और वह उनके लिए भोजन भी नहीं जुटा पाती थी। ऐसा किसी किसी दिन बीतता था कि पांचों भाई भूखे सोते थे और बहुत कष्ट हुआ। वह पत्नी, वह स्त्री जो सम्राट की पत्नी थी महाराज पांडु की, और उसे इस तरह का कष्ट देखना पड़ा, अपने आंखों के सामने वह बच्चों को वन में जाते हुए देखी, जो युधिष्ठिर अपना राज मुकुट उतार करके और वनवासी भेष बनाकर जा रहे थे वन में, इसको भी माता कुंती ने देखा था, और भी एक दिन के लिए नहीं, 13 वर्ष के लिए राज छोड़ करके वन में गए थे, और सर्वदा क्लेश सर्वदा क्लेश। और इसी संदर्भ में वे द्रौपदी की भी याद कर रहे थे, द्रौपदी सामने बैठी थी भीष्म पितामह की, इनको बहुत कष्ट हुआ। तो वधु कह रहे हैं, वधु का अर्थ होता है पुत्र की पत्नी, यह दैहिक संबंध जोड़ करके बोल रहे हैं कि हमारी वधु, हमारे पुत्र पांडु की वधु तुम लोगों के लिए बहुत कष्ट सही। जब तक पांडु रहा तब तक तो ये सुख से रही, लेकिन पांडु के बाद यह बहुत दुख में रही। जुस्मत कृते बहुन क्लेशान प्राप्त तोकवती, बच्चे वाली मां थी और बच्चों के लिए जीवित रही, एक तो अपने पति का विरह सही, बच्चों के लिए तो बच्चों के पालन पोषण में उसको बहुत सताया गया। कुंती को भी जान से मारने के लोग सोचते थे, लक्षा भवन में कुंती के साथ ही वे जलाना चाहते थे पांचों भाइयों को, लेकिन वो तो भगवान कृष्ण की कृपा थी कि वो कुछ भी नहीं हुआ। कुंती भी इस बात को जानती है कि बहुत क्लेश आया, लेकिन वह क्लेशों को सहने में प्रवीण थी। भीष्म पितामह उसके क्लेशों की याद करके रो रहे हैं, लेकिन कुंती कभी भी क्लेश से घबराई नहीं, बल्कि वो विपत्ति का वर मांगी भगवान से, हमें विपत्ति दीजिए। पर भीष्म पितामह आज अपने जीवन के अंत में अपनी पुत्र वधू की याद करके रो रहे और मुह बारंबार दुख भोगी, बारंबार दुख भोगी। यह है एक महान पुरुष का कुंती की याद करना। जैसे भगवान बड़े स्नेह से कुंती की याद करते थे, तो भीष्म पितामह भी बहुत अनुकूल भाव से कुंती की याद कर रहे हैं। इसके बाद सांत्वना देते हैं, इस तरह रो करके कुछ विलाप जैसा करके, और कहते हैं सर्वम काल कृतम मन्ने भवताम च जद प्रियम। कहते हैं बेटा, जो कुछ भी हुआ है तुम लोगों के जीवन में तुम्हारे साथ, सर्वम काल कृतम मन्ने, सब कुछ काल के द्वारा हुआ है। विशेष करके यह महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, यह काल के द्वारा उपस्थित किया गया। तुम्हारा जो अप्रिय हुआ, मैं धराशायी हुआ, द्रोणाचार्य मारे गए या शल्य मारे गए, तुम्हारे अन्य भी बहुत से स्वजन मारे गए, या प्रथा को जो कष्ट हुआ, तुमको जो कष्ट हुआ, सर्वम काल कृतम मन्ने, ये मैं निश्चित मानता हूं कि यह तुम्हारे पाप का फल नहीं है पुत्र। तुम लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हारा जो अप्रिय हुआ है, तुम्हें जो दुख हुआ है, यह काल ने किया है, तुमने नहीं किया। भीष्म पितामह के इस प्रवचन में बहुत गंभीर आशय छिपा हुआ है। कोई व्यक्ति दुख भोगे संसार में, तो उसको कहा जाता है अरे इसने ऐसा किया होगा, दूसरे को सताया होगा, या पाप किया होगा, इसलिए यह कष्ट भोग रहा है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं अपने जीवन का अनुभव देख करके, नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया है युधिष्ठिर, यह सब काल करा रहा है, काल के द्वारा हुआ है। सर्वम काल कृतम मन्ने भवताम च जद प्रियम, च शब्द से यह सिद्ध कर रहे हैं जो कुछ हुआ है तुम लोगों के साथ, और इसके साथ ही साथ तुम लोगों का जो अप्रिय हुआ है, मेरा धराशायी होना, वीरों का मरना, यह सब कालकृत हुआ है।